हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 34 एंड 35। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 34 एंड 35। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए नारद मुनि के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। नारद मुनि कह रहे हैं, एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव, त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव, त एवात्म विनाशाय कल्पन्ति कल्पिता परि एवं नरम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ति कल्पिता परि एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव स एवात्म विनाशाय कल्पन्ति कल्पिता परि एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव स एवात्म विनाशाय कल्पन्ति कल्पिता परि शब्दों का अर्थ एवं नृणाम क्रिया योग एवं मन इस प्रकार नृणाम यानी मनुष्य के क्रिया योग सारे कार्यकलाप सर्वे यानी सब कुछ संस्कृति भौतिक अस्तित्व हेतव कारण ते यानी वे एव निश्चय ही त एव आत्मन आत्ममन कार्य स्वरूप कार्य रूप वृक्ष आत्मा और विनाशय मतलब नष्ट करने के लिए कल्पन्ते सक्षम होते हैं कल्पिता समर्पित परे ब्रह्म में। अनुवाद इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसकी शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष यानी अश्वत्थ वृक्ष से की गई है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक सकाम कर्म की भोगिच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोगिच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि अर्थात पूर्णता प्राप्त करता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो फिर नए कर्म नहीं उत्पन्न होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति का विकास होता है जिससे न केवल कर्म रूपी वट वृक्ष का पूर्णतया मूलोच्छेद होगा अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक भी ले जाएगा। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगत खोजनी चाहिए जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान कर सकेंगे जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश होगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाएगी जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा इससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इस दिव्य संबंध की स्थापना हो जाने पर धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होगी। भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण देखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 34। अत्यंत सुंदर नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि इस संसार में कार्य किस तरह करना। वास्तव में भक्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक जीव की, क्योंकि इस संसार में जो भी कार्य करता है, इसके कारण उसको बंधन में बंधना पड़ता है। कुछ कार्य जो है, जिनके कारण जो सब काम कर्म होते हैं या अच्छे सोशलाइज वर्क होते हैं, वो भी यदि करते हैं तो क्या होता है, उसे बंधन ही मिलता है ना। भगवान ने बताया भगवद गीता में 14.9 में, सत्वं सुखं संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखं संजयति, यदि हम सत्व गुण में रहकर कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसके बदले में हमें सुख प्राप्त होता है और हम अधिक सुख की कामना करते हैं कि और भी ये सुख को बरकरार रखना चाहते हैं और अधिक चाहते हैं। तो सत्वं सुखं संजयति, फिर अगर उस सुखी मनुष्य, आप क्योंकि जीव संसार में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, फिर वो दुख बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सुख चाहेगा बस। और रजो कर्माणि भारत, जो रजोगुणी होंगे वो सकाम कर्म से बंधेंगे, ये कार्य करो, वो कार्य करो, इसे करो, इसे करो, कैसी संतुष्टि मिले, क्योंकि सुख सत्व गुण से भी तो संतुष्टि चाह रहा है, रजोगुण से कार्य करके भी संतुष्टि चाह रहा है, और तामो बोला ज्ञानम आवृत्य तो तमह प्रमादे संजयत्युत। यहाँ तक कि जब कोई अज्ञान नहीं हो जाता है, जैसे तमोगुण में रहकर कार्य करता है, तो वो पागलपन से भी बांध देता है, उसी में उसको आनंद आने लगता है। शराबी से पूछो, उसको आनंद आता है शराब पीने में, और इसी तरह से। तो वास्तव में यह दुनिया जो है वो जेल है। अब जेल में आप किसी भी क्लास की जेल में बैठोगे तो जेल ही हुआ ना। वास्तव में तो हमें इस जेल से बाहर निकलना, अक्लमंद तो वही है जो बाहर निकलने के लिए प्रयास करे। तो अभी नारद मुनि हमें उसी चाबी से, जिस चाबी से इस ताले को बंद किया गया है, बारंबार दूसरे दूसरे जेल में जा रहे हैं हम, बंधन का कारण बन रहे हैं, उसी चाबी से इस ताले को खोलने का तरीका बता रहे। क्योंकि मनुष्य के पास, जब जीव इस किसी को भौतिक प्रकृति में कैद हो जाता है, तो उसके पास कर्म करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता, उसको कर्म करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई क्षण के लिए भी अपने आप को कर्म करने से नहीं रोक सकता। कुछ जीव कुछ ना करे, सांस तो लेगा, ना करे कुछ, खाए तो खाएगा तो सही, तो हर एक सांस के साथ, हर एक निवाले के साथ अपराध होता है। तो फिर कैसे हम अपने उन कर्मों से, कर्मों के बंधन से छूटें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा पोर्शन दिया है कर्म कर्म योग के विषय में। ये जीव को ये समझ में आ जाए ना कि मैं सारे कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, यहाँ तक यदि ये प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाए ना तो फिर संसार में कुछ बांधने वाला रहेगा नहीं। तो उसी चीज को जिस जो अभी हम लोगों ने हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 32 से, वही को अभी नारद मुनि आगे बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, वो श्लोक नंबर 31 में बताया। ये न गच्छन्ति तत्पदम, कि जब कर्मों की श्रृंखला कर्म बंधन का ये कर्मों का ये बंधन जब टूट जाएगा तो मनुष्य भगवान के पास जाकर उनसे भेंट कर सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कर्मों के बंधन को तोड़ना। तो कैसे होगा, तो श्लोक नंबर 32 में बताया, एतत् संसूचितं ब्रह्म तापतया चिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् संसूचितम्, नारद मुनि कहते हैं ये तो विद्वानों ने बताया है। क्या, तापत्रय चिकित्सितम्, कि संसार के जितने भी कष्ट हैं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उन कष्टों को कष्टों का कारण क्या है, कर्मों के कारण। जैसे जैसे जीव कर्म करता है, क्योंकि कर्म हमारे अगर अपराध युक्त तो होते जिसी के कारण हमें वापस इस संसार में आना पड़ता है, और जो भी जीव इस संसार में आएगा उसके पास ये चार प्रॉब्लम होंगे, क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तीन कष्ट होंगे क्या, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये कष्टों का निवारण यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भक्त लोग हैं जितने विद्वान हैं उन्होंने एक निवारण बताया है कि वापस जीव इन कष्टों को भुगतना ना पड़े तो क्या करें, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। कि अगर आप औषधि क्या है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, इससे क्या होगा, समस्त कष्टों का निवारण। और कल हमने पढ़ा, आमयो यश भूतानां जायते येन सुव्रत, कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस वस्तु के उपयोग से रोग उत्पन्न होता है, जो वस्तु हमारे रोग का कारण बनती है, तदेवं यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। अगर वास्तविक कोई है ना चिकित्सित है तो क्या करता है, उसी वस्तु को अलग तरीके से दे देता है जिससे कि आपकी वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो हमारा बंधन, हमारा प्रॉब्लम क्या है, कर्मों के कारण बंधन में बंध गए हैं, और जिनके कारण बंधन में बंध के इस संसार में पुनः आना पड़ता है, जो हमारे दुखों का कारण बनता है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब क्यों हो रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण हो रहे हैं। और यदि हम गुरु आदेश से अपने कर्मों को अलग तरीके से करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह से हमने कल पढ़ा कि हनी को यदि हम लोग पानी में डाल के पियेंगे तो क्या होगा, वेट लूज होगा, और अगर उसको दूध में डाल के पियेंगे तो वेट इंक्रीज होगा। उसी तरह से दूध से अपच होगा तो फिर दही से हमारा हाजमा ठीक होगा। तो इसी वही वस्तु से क्रिएट की हुई कोई दूसरी वस्तु हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो फिर हम क्या करें, अगर हमारे कर्म हमारे प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं तो कर्मों के द्वारा हम किस तरह से कार्य करें कि हम प्रॉब्लम्स से दूर निकल जाएं, इन भव बंधन से बाहर निकले, वो उपाय भगवान बताते हैं। कह रहे हैं नारद मुनि, एवं ऋणाम क्रिया योग, एवं माना इस प्रकार, यानी कि अपने कर्मों को यदि हम भगवान की संतुष्टि के लिए, अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे निर्णाम। और यहाँ पर बता दिया कि ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। निर्णाम का मतलब होता है मनुष्य, ये मनुष्य जीवन में संभव है कि आप कोई कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एवं निर्णाम क्रिया योग, जो भी सारे कार्य कलाप इंसान जीव जो भी करता है। अब क्रिया योग का क्या मतलब होता है, कर्म योग, क्रिया मतलब कर्म, तो कर्म किस लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और कौन से कर्म, सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सारे, जितने भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, यत्करुष्येयदर्शनासी यज्जुहोसि तदासीय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यद, तुम जो भी करते हो, जो भी तुम्हारे कार्य हैं, कभी भी मत सोचो कि तुम उसके भोक्ता हो। केवल भगवान बताते भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्ता केवल मैं हूँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने कर्मों के फलों को भोगने का, केवल मैं भोगता हूँ। और इसलिए तुम क्या करो, यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, जो यज्ञ करते हो, और जो भी कार्य करते हो, तत्कुरुष व मद अर्पण, वो सब कहाँ करो, मुझे अर्पण करो। कभी कभी हृदय में आता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करो, भगवान को क्या इतनी हमारे कर्मों के फलों की आवश्यकता है जो कहते हैं कि आप है ना सारी चीजें मुझे अर्पण करो। भगवान को इन कर्मों के फलों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान ही वास्तविक भोक्ता है। अगर भगवान क्या कहते हैं आगे, जैसे ये वाला यत् करोषि कौन सा 9.27 और 9.28 में भगवान वजह बता के क्यों मांग रहा हूं मैं, शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसि कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभा शुभ फलैरेवम्, जितने भी शुभ हैं और जितने भी अशुभ हैं, उसके जो भी फल होंगे, अगर तुम कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं अपने पास रख दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा दिल में आता है, फिर हमने इतनी मेहनत से कार्य की, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो भगवान आगे कहते हैं, शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्ष से कर्म बंधन, तुम्हारा फायदा तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति दिला दूंगा। मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म के कारण तो तुम्हें बारंबार संसार में आना पड़ रहा है, कर्मों के बंधन के कारण तो कभी पशु कभी पक्षी कभी वृक्ष कभी कीड़ा बन के संसार में तुम भटक रहे हो। मेरे बच्चे, तुम, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम भटको, इसलिए तुम मेरा एक मेरी बात मानो कि जो भी कार्य करते हो वो मेरे लिए मुझे अर्पण कर दो। इस तरह से शुभा शुभ फल ही रहे मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ति माम उपैष्यते। आप सब कुछ हर प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, हर बंधन से छूट जाओगे, माम उपैष्यते मेरे पास पहुंच जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। और यत् कृत्वा न निवर्तन्ति तद् धाम परम मम, मेरे धाम में एक बार आ जाओगे ना, फिर तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा। बस तुम्हें करना क्या है, अपने कर्मों को जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो मेरे समर्पित कर दो, मुझे अर्पित कर दो सारे कार्य। भगवान कहते हैं सर्वे, अपने लिए कुछ मत रखो। तो कभी कभी ऐसा कोई सोच सकता है कि ये सौदा करने से पहले सोचते हैं क्या ये सौदा सस्ता है या फिर है ना इसमें लॉस है या प्रॉफिट। तो हम कोई भी है ना इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि एक जीवन जिसका आधा हम जाया कर चुके हैं, अब तो आधा जाया हो गया, अब पता चला है कैसे करना है, और बाकी का जो थोड़ा सा जीवन बचा है, यदि उसके सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हृदय में अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या प्राप्त होने वाला। उसकी बदले में भगवान कहते हैं माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, आपको मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो कितना कितना प्रॉफिट वाला सौदा है ये कि एक भक्त जो है, पता है जब सौदा करने जाते हैं ना मार्केट में भी, बिजनेस करने जाते तो देखते हैं, कोई भी चीज अगर आप मार्केट से परचेज करते हो तो अगर कोई भी चीज है, जैसे शॉपकीपर 100 रुपए वाली, आप देख रहे हो कि उस पे प्राइस लिखी है 200 रुपए, लेकिन वो चीज आपको 100 रुपए में दे रहा है, और तो फिर आप क्या कहोगे दिल में कि 200 वाली चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी, मैंने कितना अक्कलमंदी का काम किया, मैंने तो शॉपकीपर को क्या किया, बुद्धू बना दिया। तो भक्त ऐसे करता है, भगवान को बुद्धू बना रहा है एक तरह से, कि भगवान तुमको एक छोटी सी जिंदगी गंदी जिसके अंदर कोई स्वार्थ कोई सुख वैसे ही नहीं है, बंधनों से भरी हुई जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोगों से पीड़ित ये जिंदगी है वो तुम्हें दे रहा हूँ और उसके बदले में शाश्वत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो क्या ये भगवान को बुद्धू बनाना है? नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये प्रेम का सौदा है। इसमें जो जीतता है वो भी खुद को हारता है और जो हार रहा है वो भी खुद को हार रहा है। मतलब इसमें हर तरफ जीत है, हर तरफ हार है, क्योंकि प्रेम का सौदा क्या होता है? तत्सुख सुखित्वम, कि मैं कैसे अपने प्रेमी को सुखी करूं, उसके बदले में मुझे भले ही कोई दुख मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं अपने प्रीतम को खुश करना चाहती हूँ, तो ये है प्रेम का सौदा। और जब भक्त प्रेम का सौदा करता है अपने भगवान के साथ कि मैं कृष्ण तुम्हें कैसे खुश करूं, तो भले ही उसके बदले में उसको दुख मिलता है लेकिन क्या भगवान ने भी तो वो सौदा किया होता है, तो भगवान की भी क्या इच्छा होती है कि मैं कैसे अपने भक्त को खुश करूं। तो दोनों की तरफ से दोनों की जीत हो रही है। ये तो ये वास्तव में ये प्रेम जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा है और यही जीवन की परम सिद्धि है कि अपने भवबंधन से छूटकर हम भगवान को प्राप्त करें। इसे आगे बताते हैं, त एव आत्म विनाशाय। आत्म विनाशाय मतलब जो भी सारे कार्य, जो एक कार्यों का वृक्ष बना हुआ था, जो बंधन बने हुए थे, तो वो क्या पहले कार्य हमारे बंधन का कारण बन रहे थे लेकिन जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो विनाशाय वही हमारे कर्म बंधन को नष्ट करने वाले बन जाते हैं। कल्पन्ते कल्पिता परे, वो हमारे बंधन का बंधन को तोड़ने के बंधन को काटने के लिए सक्षम हो जाते हैं जब हम उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब नारद मुनि ने ये बताया कि जितने भी हमारे कर्म हैं जो हमारे बंधन का कारण बनते हैं अगर हम भगवान की सेवा में उनको यूज करते हैं तो वही बंधन जो है वो हमारी मुक्ति, वही कर्म जो हमारे बंधन का कारण बनते थे वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाएंगे। तो ये करने के लिए हमें करना क्या, प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं अपने कर्मों का, कर्म फलों को इस तरह से परित्याग, तो यहाँ पर बताया जिस तरह से नारद मुनि ने किया, कैसे किया? शुद्ध भक्तों की संगति, यह हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वप्रथम हमें ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोज करनी चाहिए जो ना केवल वेदांती पंडित हो बल्कि स्वरूप सिद्ध भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी हों। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मेरे विषय में जानना है तो क्या करो, भक्त्यामाम अभिजानन्ति, केवल भक्त से जानो। जो कोई भक्त नहीं है तो भले कितना ही ज्ञानी हो आपको वो प्रेम नहीं दे सकता। और जब इस तरह के शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से प्राप्त हो तो फिर कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि ये ना जाति का, और ये भेद नहीं रखना चाहिए और प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे नारद मुनि ने उनकी सेवा की। और शुद्ध भक्त जब सेवा से प्रसन्न हो जाते मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना, कथा को बैठ के श्रवण करना, तो शुद्ध भक्तों को यही लगता है कि इस लोग जो जीव जो है वो बहुत दुखी हैं और वो भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और इसलिए वो जिधर जिधर जाते रहते हैं और फिर सब भक्तों को भगवान की कथा के विषय में बताते हैं, भगवान के ना भक्ति के विषय में बताते हैं, तो यही उनकी सेवा है। इससे जब सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे और फिर उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी जिससे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा इससे भी परे शुद्ध आत्मा तक परमात्मा के साथ अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो भक्तजन है उनके साथ रहते रहते हमें दिव्य विषयों के विषय में पता पड़ेगा कि मैं आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और उससे भी आगे भगवान परमात्मा के विषय में और फिर उससे भी आगे भगवान के स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। और जब भक्तों का संग प्राप्त होता है, दिव्य संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध भक्ति जो हृदय में, शुद्ध भक्ति हृदय में पहले से ही है, उसको विकसित करने के लिए भक्तों का संग चाहिए, है ना। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, कल भक्त बता रहे थे कि हैंडपम्प होता है ना, जिससे हैंड से पानी निकालते हैं, उसमें पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा पानी ऊपर से डालते हैं और फिर उसको चलाते हैं, तो फिर क्या होता है, बहुत सारा पानी उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें अग्नि होती है, लेकिन दूसरा साइड जो माचिस बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स, उस पर भी वही मसाला लगा हुआ होता है और फिर दोनों को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलती है। उसी तरह से जब दो भक्त मिलते हैं, जैसे एक न्योपायित भक्त होगा, शुद्ध भक्त से जब मिलता है, तो उससे भक्ति जो हृदय में सुपुष्ट सोई हुई अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में, वो जागृत हो जाती है। और आगे श्री प्रभुपाल ने अत्यंत सुंदर बात बताई कि मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण देखने लगते हैं। शुद्ध भक्ति की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। अब क्या होता है, शुरू में जैसे कल हमने शायद ये वाली मिसाल पढ़ी थी कि जैसे एक अग्नि हो, अब लोहा अलग है, अग्नि अलग है, लेकिन लोहे को यदि हम अग्नि के अंदर, बढ़ते हुए अग्नि के अंदर रख देंगे ना, तो बहुत देर के बाद क्या होगा, लोहा भी तपकर अग्नि बन जाएगा, फिर वो वही कार्य करेगा जो अग्नि करती है। उसी तरह से क्या होगा, ये जो हम अभी तक, जब अभी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन जब शुद्ध भक्तों का साथ कंटिन्यूस करेंगे, उनके साथ कथा श्रवण करेंगे, उनके साथ है ना भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, वही दिव्यता, वही शुद्धता हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगेगी और फिर इस तरह से कार्मिक विकास होगा, हम भौतिक जगत से दिव्य जगत पर स्थापित हो जाएंगे। श्लोक नंबर 35। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम् यत् तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्। शब्दकात यत् यानी जो भी अत्र इस जीवन या जगत में क्रियते करता है, कर्म अर्थात कार्य, भगवत परितोषणम् भगवान की संतुष्टि के लिए, यानी कि अब जब जीव अपने सारे कर्म जो भी कर रहा है वो अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है, ज्ञानम यत्तदधीनम्, ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान, यत्तद यानी जो तरह, जो इस तरह कहलाता है, अधीनम यानी कि, अब देखो वास्तविक में क्या है, हमें भक्ति योग तक पहुंचा रहे हैं, है ना, कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम्, अब जो भी कार्य करो किसके लिए करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर ज्ञान क्या है, आप ज्ञान की बात क्यों करते हो, ज्ञान योग क्या है, तो यहाँ पर ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानम तद ज्ञानम यत्तद अधीनम ही, वो तो आश्रय है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा फिर आप भगवान की भक्ति करोगे। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं ज्ञानम यत्तद अधीनम, वो अधीनम है, वो आश्रय है, वो ज्ञान तो सिर्फ आपको आश्रय प्रदान करता ही, यानी निश्चय ही भक्ति योगम, भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग यानी भक्ति योग संबंधी, समन्वितम यानी भक्ति योग से युक्त। अनुवाद देखिए, नारद मुनि बता रहे हैं कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। ठीक है, जो भी आप यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषण, आप जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं उसे क्या करें, कहते हैं भक्ति योग समन्वितम, उसको भक्ति योग कहा जाता है, या फिर भगवान के प्रेम की, दिव्य प्रेम की भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है, जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो आपको उस भक्ति योग तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आम धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। अगर आप सकाम कर्म करते हो शास्त्रों के अनुसार, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुद्धिकरण होता है और फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आपको प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति, कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का अन्य रूप मानते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये भक्ति योग भी तो कर्म योग जैसा ही लगता है, आप कार्य कर रहे हो और भगवान को समर्पित कर रहे हो, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही ऊपर है। अब क्यों ऊपर है, क्योंकि भक्ति योग में आपका संबंध होता है भगवान के साथ, है ना। कर्म योग में आप कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, कर्मयोग में आप सुप्रीम पर्सनैलिटी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो कि ठीक है जो भी भगवान का ना, जो भी है जिसने भगवान ये संसार को बनाया है, वो चाहे निराकार ब्रह्म है या फिर परमात्मा है, जो भी है उसको प्रसन्न कर रहा हूँ मैं, भगवान के साथ प्रेम नहीं कर रहे हो। इसीलिए जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर आप भले कुछ भी ज्ञान योग है या कर्म योग है उससे कुछ आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को देते हो अगर कुछ, अगर उससे प्रेम नहीं करते हो तो फिर आप देकर संतुष्ट नहीं होगे। लेकिन अगर आप जैसे अगर आपके पास एक ही ग्लास जूस का है, ठीक है, एक ही ग्लास जूस का है और आपको कोई कहता है समर्पित कर दो, इससे आप अगर किसी कोई बस आप सोचो कि मैं किसी को समर्पित कर देता हूँ, किसी को भी गरीब को दे दिया या कुछ कर दिया, तो आप दे तो देखो दोगे कि अच्छा है चलो ठीक है मैं दे देता हूँ ये शुभ कार्य है, लेकिन उससे आप प्रेम तो नहीं करते थे। लेकिन वही जूस अगर आप भगवान जिससे प्यार करते हो अचानक से वो आपके घर पे आए और आप पे ना समझो मेरे पास एक ही मैंने बना के रखा है और वो आ गया अचानक से, फिर आपको इतनी खुशी होगी कि देखो कितना अच्छा है, उसे शुक्र ये आया, इससे मैं कितना प्यार करता हूँ, तो इसको मैं पिलाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा, फिर वो पी के जाएगा हृदय से प्रसन्नता होगी कि कितना अच्छा था, शुक्र आज ये आए और मैंने इसको पिलाया, है ना। तो जब तक भक्ति योग प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक आप समर्पण कर्मों को त्यागने से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योग ज्ञान तथा कर्म दोनों से ही ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के अधीन है। अब यहाँ पर भक्ति योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि देखो अगर ज्ञान योग आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें भक्ति नहीं है, अगर आप हृदय में भक्ति नहीं है, तो ज्ञान योग से यदि संन्यास भी ले लिया तो फिर वो इनकम्प्लीट है। और उसी तरह से अगर कर्म योग कर रहे हो लेकिन उसमें भक्ति सम्मिलित नहीं है तो वो भी इनकम्प्लीट है। लेकिन भक्ति अगर आप कर रहे हो तो भक्ति का मतलब ही है कि ज्ञान और कर्म दोनों इसके अंदर स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं क्या, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान ज्ञान योग उसके अंदर आ जाता है। कर्म भी आप भक्ति के जरिए, जाहिर सी बात, भक्ति का क्या मतलब है, भगवान की सेवा करना, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान के लिए कर रहे हो, तो भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों ही आ जाते हैं। स्वतंत्र है भक्ति, किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्ञान योग में और कर्म योग में भक्ति नहीं है तो वो आपको परम सिद्धि कभी प्राप्त नहीं कराएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह क्रिया योग का, यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास जी के लिए की है विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। अब शुरू में जो क्रिया योग बताया था ना, जैसे इस श्लोक में 34 में एवं निर्णाम क्रिया योगम, क्रिया योग बताया था कि कर्म योग यानी कि वो आप भगवान सुप्रीम पर्सनली को समर्पित कर दो, और यहाँ पर क्या बता दिया, भगवत परितोषणम, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें श्री प्रभुपाद जी बोले मूल सिद्धांत बता दिया कि भगवान को प्रसन्न करना है, यानी उसमें भक्ति मिला कर दे दी, अगर भक्ति निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। भगवान नहीं चाहते, अब क्यों करना है उसकी वजह, जहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें, वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के दाब जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलमशों से शुद्ध कर ले, अतः जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद ने बताया। देखो अब वास्तव में इसमें भगवान की करुणा ही है, जो भगवान स्वीकार करने के लिए ना तैयार है। तो भगवान कहते हैं कि आप जो भी कार्य करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। उससे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जीव बारंबार दुखों में, कष्टों में, त्रेताप में भटकता रहे। तो धीरे धीरे अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमारे भौतिक जितने भी कलमश हैं, जितने भी अशुद्धि है, कर्मों के कारण जो बंधन है वो टूट जाएंगे, और ये जो शुद्धिकरण, इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। ये ज्ञान है जिसके कारण, ये आध्यात्मिक ज्ञान ये है जिसके कारण हम भगवान के सानिध्य को महसूस करते हैं, भगवान के लिए कार्य करने को स्वीकार करते हैं। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। ज्ञान तो वो आश्रित है कि भगवान के लिए किया जा रहा है, अगर उसमें भगवान निकाल दिया जाए तो ज्ञान कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। ऐसे हम लोग पढ़ा भी था ना, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति योग या भगवान की संतुष्टि से विहीन कोई ज्ञान किसी को भगवत धाम तक नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष नहीं दिला सकता, भले कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, भौतिक ज्ञान नहीं कह रहे यहाँ पर। यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, उसके विषय में बता रहे हैं कि भक्ति योग से अगर उस ज्ञान के अंदर भक्ति योग सम्मिलित नहीं है, भगवान की संतुष्टि से विहीन है वो ज्ञान, तो आपको भगवान के धाम तक नहीं पहुंचा सकता। भगवान ने कहा यान्ति मद्याजिनोपि मा, मेरे धाम आने की शर्त ये है कि तुम्हें मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कृति, यदि आप मेरे मुझे नमस्कार करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मन में केवल मेरे विषय में सोचोगे तब भी आप मेरे पास आओगे। लेकिन आप ज्ञान प्राप्त करते रहो करते रहो करते रहो, भगवान की भक्ति नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं कि वो आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता और वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। अब जीवन जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भले ही वो कितना बड़ा ज्ञान क्यों ना करे, ज्ञान योग क्यों ना हो, कर्म योग क्यों ना हो, भक्ति योग उसमें सम्मिलित नहीं है तो वो हमारी परम लक्ष्य को, परम सिद्धि को हमें प्राप्त नहीं करा सकेगा, तो फिर क्या फायदा। अभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसा कि नैष्कर्म्यमप्याच्युत भाववर्जितम्, इस श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है, याद है आप लोग को ये वाला श्लोक 5.5.12 में, बहुत ही सुंदर श्लोक था, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसमें क्या बताया था, नैष्कर्म्यमप्याच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमालं निरंजनं कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदा प्यकारणं नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाववर्जितम्। कि अभी आप आत्म साक्षात्कार का क्या काम कर रहे हो, ज्ञान वाला काम कर रहे हो जो कि समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित है, अगर ऐसा भी कार्य कर रहे हो भाववर्जित तो भी न शोभते ज्ञानमालम निरंजनम, तो भी वो शोभा नहीं देता है अगर उसमें अच्युत भाव नहीं है, अगर उसमें भगवान की भक्ति नहीं है। तो भले ही आप आत्म साक्षात्कार का भी कार्य करोगे, भले ही ज्ञान समस्त ऐसा ज्ञान जो कि भौतिक आसक्ति से बिल्कुल दूर है ऐसा ज्ञान भी प्राप्त करोगे, तो भी यदि उसमें भगवान की भक्ति नहीं है तो ना शोभते, ऐसा ज्ञान बिल्कुल पसंद का नहीं आएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्म बंधन को छुड़ाएगा नहीं। अब जब ऐसा ज्ञान जो कि मतलब ऐसा ज्ञान जो समस्त भौतिक आसक्ति से बिल्कुल परे है लेकिन नैष्कर्म्य है, लेकिन उसमें भगवान का भाव नहीं है, तो वो बिल्कुल मलम मतलब वो ज्ञान मलम निरंजन। उसने क्या बताया था कि वो आपको वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं कराएगा, वो न शोभते। फिर आगे बताया कुतः पुनः शाश्वत भद्रमेश्वर, फिर वो कार्य जो सकाम कर्म होते हैं जो सदैव के लिए अभद्र होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, वैसे शोभा नहीं देते हैं, तो न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम, फिर ऐसे ऐसे कार्य से जीव को कैसे कोई लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि भगवान की भक्ति के लिए काम नहीं, मतलब जो उसके अंदर वैसे ही बंधा फंसा हुआ है, वैसे ही सकाम कर्म है जिसके अंदर आपके बंधन बंधन वाले कार्य हैं, तो वो कैसे शोभा दे सकते हैं जब वो निष्काम कर्म भी शोभा नहीं दे सकते। मतलब कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि जब तक आप कोई कार्य भगवान की भक्ति के साथ नहीं कर रहे हो, भगवान कहते हैं वक्त्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छते, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं दी होगी। भगवान बहुत ही सुंदर भगवद गीता में बताया कि देखो जो भी मुझे अर्पण करना है उसके अंदर भक्ति डाल के दो, तो चाहे ज्ञान हो या कर्म, अगर वो भक्ति से विहीन आप भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। भगवान बताते हैं कि आपको यदि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। भगवान बता 10.10 में तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम्, आपको क्या करना है, प्रेम से मेरे नाम का भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम, फिर मैं आपको बुद्धि योग में दूंगा, ज्ञान में प्रोवाइड करूंगा हृदय से ये नमाम उपयांति, जिससे आप मुझे प्राप्त कर सको। तो सबसे बड़ी भक्ति भगवान की क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, और इसी से आपको परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कर्म बंधन की श्रृंखला टूट सकती है और हम पुनः भगवान के साथ भेंट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हरे बोल।